नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीन नए आपराधिक कानूनों को ईज ऑफ जस्टिस की ओर महत्वपूर्ण कदम बताया। 9,300 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी। पहले दिन कांग्रेस की ओर से प्रमोद जैन ने पर्चा भरा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ में वार्षिक रूप से भर्ती की घोषणा की। और श्रम और रोजगार मंत्रालय कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान शुरू करेगा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले साल लागू हुए ऐतिहासिक तीन आपराधिक कानूनों से न्यायिक व्यवस्था त्वरित, सुलभता और सरल तरीके से न्याय देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कानून ईज ऑफ जस्टिस की ओर महत्वपूर्ण कदम हैं। श्री शाह नवीन आपराधिक कानूनों के एक साल पूरे होने के मौके पर आज जयपुर में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन कानूनों को एक लंबी चर्चा और सैकड़ों लोगों के सुझाव और मंथन के बाद लागू किया गया है। श्री शाह ने इन कानूनों की विभिन्न विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामलों में विशेष प्रावधान किए गए हैं।
मैं विश्वास के साथ राजस्थान की जनता को बताने आया हूं, आपराधिक न्याय प्रणाली के कानून आपको समय पर सुलभ तरीके से, सरलता से न्याय देने का काम करेंगे। ये कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए अलग चैप्टर दिया है, एफआईआर और जीरो एफआईआर का प्रावधान किया है, सभी जब्ती की वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी है और 7 साल से ज्यादा सजा जिसमें है ऐसे हर अपराध के लिए फॉरेंसिक जांच को हमने कंपलसरी किया।
श्री शाह ने कहा कि इन कानूनों से पीड़ित को समयबद्ध तरीके से न्याय दिलाने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों को लागू करना 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बदलाव है।
ये जो रिफॉर्म आया है वो 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा रिफॉर्म हमारे तीन क्रिमिनल जस्टिस कानूनों को आगे लागू करना है और इसके कम्प्लीट इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली बन जाएगी।
श्री शाह ने देशवासियों से आग्रह किया कि वे अपने जीवन में स्वदेशी को अपनाने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि केवल देश में बनी वस्तुओं का उपयोग करने से देश में उत्पादन बढ़ेगा और इससे देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। श्री शाह ने कार्यक्रम में राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत प्राप्त निवेश प्रस्तावों में से 4 लाख करोड़ रुपए के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग और लगभग 9,300 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इसके साथ ही प्रदेश के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए 260 करोड़ रुपए तथा दुग्ध उत्पादकों को दूध सब्सिडी के 364 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने और अपराधियों पर ठोस कार्रवाई करने के क्रम में राज्य सरकार ने पुलिस व्यवस्था को आधुनिक और कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, जिसमें एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स सम्मिलित हैं। इस मौके पर राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति संजीव प्रकाश शर्मा ने कहा कि तीन नए आपराधिक न्याय कानूनों से भारतीय न्याय प्रणाली अधिक गतिशील और आधुनिक बनी है। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इन नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत नियम और अधिसूचना जारी करके क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है।
सबसे पहले 1 जुलाई 2024 को एक अधिसूचना जारी की गई जिसके तहत मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का नाम बदलकर जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर दिया गया। 16 अगस्त 2024 को राज्य के गृह विभाग ने राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया जारी सेवा एवं क्रियान्वयन नियम 2024 अधिसूचित किए। 10 सितंबर 2025 को 2 महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं जारी हुई। पहली अधिसूचना राजस्थान ई साक्षर मैनेजमेंट रूल्स 2025 है। दूसरी अधिसूचना द्वारा कम्युनिटी सेवाओं के अवार्ड को दंड के रूप में प्रदान करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि आज पहले दिन कांग्रेस की ओर से प्रमोद जैन ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उपचुनाव के लिए उम्मीदवार 21 अक्टूबर तक नामांकन भर सकेंगे। 23 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 27 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 11 नवम्बर को मतदान होगा और मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि पीएम गतिशक्ति एकीकृत योजना और क्षेत्र आधारित विकास के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करती है। नई दिल्ली में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की 4वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि ये पहल सरकार और शासन के हर क्षेत्र को आगे बढ़ाती है। श्री गोयल ने पीएम गतिशक्ति सार्वजनिक मंच, पीएम गतिशक्ति ऑफशोर एनएमपी डैशबोर्ड सहित पीएम गतिशक्ति के अंतर्गत कई पहलों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि पीएम गतिशक्ति से मंत्रालयों और राज्यों के बीच मिलकर और अधिक समन्वित ढंग से काम करने की परिपाटी शुरू हुई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री प्रधान ने कहा कि 21वीं सदी ज्ञान आधारित सदी है और भारत इस ज्ञान आधारित विश्व और अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित राष्ट्र बनने के लिए भारत को स्पष्ट दृष्टिकोण, उन्नत तकनीक और आईटी संचालित समाधानों की जरूरत है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले सालों में विद्यार्थी वैश्विक स्तर पर इनका निर्माण करेंगे। देश भर के 3 लाख से ज्यादा स्कूलों और 25 लाख से अधिक छात्रों और शिक्षकों ने बिल्डथॉन में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। ये राष्ट्रव्यापी पहल अटल नवाचार मिशन और नीति आयोग के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को सशक्त बनाना है ताकि वे अपनी रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल का प्रदर्शन कर सकें। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वार्षिक रूप से भर्ती की जाएगी। उन्होंने आरपीएफ को आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस करने से जुड़ी विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया। रेलवे सुरक्षा बल के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर गुजरात के वलसाड़ में श्री वैष्णव ने कहा कि आरपीएफ कर्मियों को जल्द ही वीएचएफ सेट उपलब्ध कराए जाएंगे और संचालन क्षमता को मजबूत करने के लिए उन्हें उन्नत डिजिटल और ड्रोन प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
जितने आपको चाहिए उतने वीएचएफ लीजिए, इसमें बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। जो एनसीआरबी के साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो डेटाबेस एप्लीकेशन है उसके लिए 14 करोड़ रुपीस की जरूरत है, वो भी आपके लिए सैंक्शन किया जाता है। और सभी ट्रेनिंग सेंटर्स में एडवांस डिजिटल और ड्रोन की ट्रेनिंग, इसके लिए भी 21 करोड़ रुपीस की लागत से सभी जगह लैबोरेटरीज की स्थापना की जाएगी।
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य नियोक्ताओं को स्वेच्छा से पात्र कर्मचारियों की घोषणा और नामांकन के लिए प्रोत्साहित करना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि यह योजना इस वर्ष 1 नवंबर से अगले वर्ष 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। मंत्रालय ने कहा है कि नियोक्ता उन सभी मौजूदा कर्मचारियों का नामांकन कर सकते हैं जो 1 जुलाई 2017 और 31 अक्टूबर 2025 के बीच प्रतिष्ठान में शामिल हुए हैं। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज बीकानेर के मुक्ता प्रसाद नगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निरोगी काया पहला सुख है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। केंद्र और राज्य सरकार इसी भावना पर चलते हुए प्रदेश में चिकित्सा के साथ शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम कर रही है। आबू रोड में ब्रह्म कुमारी संस्था की ओर से एकता और विश्वास विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज संपन्न हुआ। इस सम्मेलन के समापन समारोह में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके भी शामिल हुए। श्री मेघवाल ने ब्रह्म कुमारी संस्था के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि संस्था दुनिया में शांति फैलाने के लिए अच्छा काम कर रही है।
ग्लोबल समिट 2025 का जो सब्जेक्ट यूनिटी एंड ट्रस्ट, और हम संसार को एक फैमिली कैसे मान सकते हैं। मैं आपके माध्यम से ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जब G20 हुआ तब प्रधानमंत्री जी ने एक ध्येय वाक्य कहा, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। हम एकता के सूत्र में जब बंधेंगे तो निश्चित रूप से भारत की भी ताकत बढ़ेगी।
केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज बीकानेर पहुंचकर वरिष्ठ दिवंगत कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने श्री डूडी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक सच्चे जननायक थे जिन्होंने किसानों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह को भी उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अजमेर के राजकीय जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के विकास के लिए राज्य सरकार ने 191 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इस राशि से अस्पताल में एक अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का निर्माण कराया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीन नए आपराधिक कानूनों को ईज ऑफ जस्टिस की ओर महत्वपूर्ण कदम बताया। 9,300 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी। पहले दिन कांग्रेस की ओर से प्रमोद जैन ने पर्चा भरा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे सुरक्षा बल RPF में वार्षिक रूप से भर्ती की घोषणा की। और श्रम और रोजगार मंत्रालय कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान शुरू करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।